नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नरेंद्र मोदी जापान और चीन की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। श्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये पहली बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
भारत और जापान की दोस्ती का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने पिछले 12 वर्षों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों देशों के बीच 22 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच पुरानी मित्रता को और मजबूत करेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो।
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस योजना को गरीबों के लिए फायदेमंद बताया। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना की झलकियां साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने वंचित लोगों का सशक्तिकरण कर जीवन को बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम असम के 2 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचेंगे। कल सवेरे श्री शाह गुवाहाटी में राजभवन के नव निर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद गृहमंत्री राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री सशस्त्र बलों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बाद में श्री शाह गुवाहाटी में पंचायत सम्मेलन में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार 3रे दिन यातायात के लिए बंद है। इस कारण विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
NH-44 भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। जम्मू के नगरोटा से रियासी, चेनानी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल, श्रीनगर की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। कटरा और उधमपुर शहरों के यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साथ परिचय पत्र रखें। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी अवरोध को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। किश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग राजमार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ रहा, जिससे भूस्खलन और वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को ठीक करने के कार्य में तेजी आई। मौसम विभाग ने राज्य में मॉनसून की वर्षा 2 सितंबर तक जारी रहने की आशंका व्यक्त की है। तेलंगाना के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित है। कल हुई लगातार बारिश से कामारेड्डी, मेडक और निर्मल जिले प्रभावित हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज तेलंगाना और तटीय कर्नाटक के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जेनामणि ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हुई है। देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का आज दूसरा दिन है। मराठवाड़ा में भगवान गणेश का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंद ने सिंगफील्ड कप में उपविजेता बनकर अपनी जगह पक्की की है। अमरीका की वेस्ली सो ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। वेस्ली सो ने नौवे और अंतिम दौर में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव को हराया और प्रज्ञानानंद ने फैबियानो करुआना के साथ ड्रॉ खेला। प्रज्ञानानंद ने अमरीका के लेवोन एरोनियन से ड्रॉ खेला तथा करुआना को हराया, जबकि करुआना ने टाई ब्रेकर में एकमात्र ड्रॉ वेस्ली सो के साथ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।